आगे चलने से पहले आयत नंबर 5 का निचोड़ या खुलासा फिर हमारे सामने क्या आता है कि अल्लाह ताला की तदबीर या अमर जो है वो अल्लाह की तरफ से वापस लौटता है एक ही दिन में, जिसे फरिश्ते लेकर चलते हैं, फरिश्ते लेकर जाते हैं, और सऊद यानी ऊपर चढ़ने का या आने जाने का जो फासला है वो इतना है कि जो गैर फरिश्ता है वो 1000 साल में तय करे, या इससे कयामत का दिन मुराद है। क्यों? कि इस दिन इंसानों के सारे अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाएंगे, और ये जो दिन है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है कभी ये कहते हैं कि ये दिन जो है तुम्हारे हां के 1000 साल के बराबर हुआ करता है, और कभी ये कहते हैं कि 50,000 साल के बराबर है, है ना? कभी अल्लाह ताला जो है वो यूं कहते हैं, कभी 1000 साल जो हम गिनते हैं, और कभी क्या कहते हैं कि 50,000 साल। तो ये दिन कौन सा दिन है? क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है वो इसको मुख्तलिफ अंदाज में कहा कि 3 जगहों पर कुरान में इसका जिक्र मिला है, तीनों जगह इसकी जो मुद्दत है या जमाना है वो मुख्तलिफ है। तो आप देख लीजिए कि जो 3 मकामात हैं और तीनों जगह अलग अलग दिन मुराद है। सूरत हज आयत 47 में यौम का लफ्ज जो है इसके मानी है उस जमाना और मुद्दत से जो अल्लाह के हां है। बस यौम का मतलब क्या है? वो मुद्दत और जमाना जो अल्लाह के हां है। फिर सूरत मआरिज में यौम की मिकदार 50,000 साल बताई गई। तो और यहां पे जो है कितनी मिकदार है? 1000 साल। ये दिन है कौन सा? क्यों इसकी मुद्दत के तायुन में फर्क है? बाज मुफस्सरीन की ये राय है कि ये दिन जो है इससे मुराद दिन है कयामत का। एक ये राय भी है, इससे मुराद है दिन कयामत का। एक राय ये है कि यौम हिसाब मुराद है, क्योंकि हिसाब का दिन जो है कुछ लोगों के लिए हल्का होगा, कुछ के लिए भारी होगा। और एक राय क्या है कि इस यौम का तय्यून और तफसीर जो है ये अल्लाह के सुपुर्द कर दे। तवक्कुफ किया बाज उलमा ने इस पर, वो ये कहते हैं जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि इस बारे में खामोशी बेहतर है। तवक्कुफ के मानी क्या है? खामोशी बेहतर है, और इसकी हकीकत जो है वो अल्लाह के सुपुर्द जो है वो कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि ये वो दिन हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने अपनी किताब में किया है, और अल्लाह ही उनकी हकीकत को जानता है, और मैं इसको बुरा समझता हूं कि कुरान में वो बात कहूं जिसका मुझे इल्म नहीं है। तो ये दिन भी आयाते मुतशाबिहात में से, अल्लाह ही को इसकी कैफियत जो है वो मालूम है। और बहरहाल आयत 6 जो है इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना तारुफ करवाया है कि अल्लाह ताला जो है वो कैसा है। वही है हर पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, जबरदस्त और रहीम। अगली आयत बड़ी खूबसूरत है, अल्लज़ी अहसना कुल्ला शैइन खलकहु, जिसने अल्लज़ी वो ज़ात जिसने अहसना खूब बनाई, खूबसूरत बनाई, एहसान के दर्जे पर हसीन बनाई, कुल्ला शैइन हर चीज, खलकहु जो चीज भी उसने बनाई, तो जो चीज भी इसने बनाई खूब ही बनाई। अब आप देखिए कि ये एक आयत है, और इस एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो ये बता रहे हैं कि चूंकि अल्लाह आलिमुल गैब है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो जाहिर और पोशीदा दोनों का जानने वाला है, जबरदस्त है और रहीम है, जब उसकी ऐसी और ऐसी सिफात है तो इसलिए अल्लाह ताला की हिकमत का, अल्लाह ताला के गलबे का, अल्लाह ताला के जबरदस्त होने का, अल्लाह के इल्म का मंशा ये है, उसका तकाजा ये है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी बनाया इसका अपना एक हुस्न है, और उसकी अपनी एक इंफरादियत है। ये है इसके मानी। एक मानी क्या है कि चूंकि अल्लाह की सिफात ऐसी और ऐसी और ऐसी है ना, इसलिए इन सिफात की हिकमत ये है या इनका तकाजा ये है कि इसने जो कुछ भी बनाया इसमें हर चीज का अपना एक हुस्न है और अपनी इंफरादियत है। और आप देखें कि रेत के दो जर्रे भी आपस में मुख्तलिफ हैं, हाथों की दो लकीरें भी आपस में मुख्तलिफ हैं, एक दरख्त के दो पत्ते भी आपस में जो है वो मिलते नहीं हैं। और दूसरे इसके मानी क्या है कि इसकी बनाई हुई हर चीज हसी है। एक मुनफरिद है, दूसरे मानी क्या है, हसी है। बाज ने आसना के मानी अतकना व अहकमा के किए हैं। इसके मानी क्या होते हैं? अतकना व अहकमा के मानी है हर चीज मजबूत और पुख्ता बनाई, हर चीज मजबूत और पुख्ता बनाई। और बाज ने इसको अलहमा के मानी में लिया है। अलहमा के मानी क्या होते हैं कि हर मखलूक को इन चीजों का इल्हाम कर दिया जिसकी वो मोहताज हैं। और ये जो आयत है कि अल्लाह वो जात है जिसने हर चीज की खिलकत, उसकी तखलीक हसीन और बेहतर बनाई है, और ये अगर आप एक एक चीज पर गौर करना शुरू करें तो हर चीज अपनी जात में एक हुस्न रखती है। और इन सबसे ज्यादा हसीन और बेहतर अल्लाह ताला ने किसको बनाया? इंसान को बनाया। वबदा खल्कल इंसान मिन तीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कहते हैं कि उसने इंसान की तख्लीक की इब्तदा गारे से की। तो अब आप यूं देखें, आप गौर करें कि कायनात बड़ी हसीन है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी बेहतरीन है, लेकिन इनमें सबसे बेहतरीन क्या है? इंसान। लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, हसीन तकवीम, बेहतर शक्ल सूरत में इंसान को पैदा किया। अब आप देखिए कि बहुत सी चीजें जैसे कुत्ता है, खिंजीर है, सांप, बिच्छू, शेर, भेड़िया, बजाहिर देखें तो ये जहरीले और दरिंदे जानवर हैं, आम नजरों में बुरे समझे जाते हैं, लेकिन वैसे अगर आप दुनिया में मसलहत के लिहाज से देखें तो इनमें से कोई भी बुरा नहीं है। क्यों? नहीं है चीज नकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो जो भी चीजें दुनिया में वजूद रखती हैं, हैवानात हैं, नबातात हैं या जमादात हैं, जो कुछ भी हैं, हर चीज जो है वो उनको पैदा करने का कोई ना कोई मकसद है, उनके अंदर एक हुस्न है। मसलन आप गुस्सा ही देख लें, गुस्सा हमें तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन इस्लाम के खातिर अगर हमें गुस्सा आए तो ये क्या है? ये पसंदीदा है। इसी तरह हिर्स है, तो हिर्स अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन नेकियों की हिर्स ये बड़ी अच्छी चीज है। इसी तरह आप हमें क्या बात पता चलती है कि बज़ाहिर जो चीजें हमें बुरी भी लगती हैं और बाज जगहों पे उनका इस्तेमाल जो है वो बहुत बेहतरीन है, वो बहुत अच्छा है, और हमें भी अपनी जिंदगी में उसका इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। मसलन आप देखिए कि इससे फिर हमें क्या बात पता चलती है कि देखने वाली आंख हो तो कायनात की हर हर चीज में हुस्न व जमाल नजर आता है। सब्जा है, दरिया, पहाड़, वादियां, बादल, बरखा, सूरज, तारे, ये तो बेजान चीजें हैं, मगर इनका हुस्न जो है वो खुद ब खुद जो है वो नुमाया होता है, नजर आता है। और जानदारों का हुस्न वो भी बहुत ज्यादा है, वो इनसे बढ़कर है, और इंसान का हुस्न सबसे बेहतरीन है, और वो क्या है? वो अल्लाह ताला का मास्टरपीस है। इंसान जो है वो हुस्ने अजीम का शाहकार है। धनक, शफक, महताब, घटाएं, बिजली, तारे, नगमे, फूल, इसके दामन में क्या कुछ है, हाथ में दामन आए तो कायनात के दामन में बहुत कुछ है, बहुत हसीन है, अल्लाह ताला ने बनाई है। और ये बात भी बड़ी खूबसूरत है, एक अक्से ना तमाम पे आलम को वजद है। एक अक्से, अक्स होता है ना जैसे, एक अक्से ना तमाम पे आलम को वजद है, क्या पूछना है आपके हुस्न जमाल का। और फिर कुरान मजीद में अल्लाह ताला कायनात के बारे में कि उसके अंदर जो नज्म, तरतीब, हुसन और जमाल है बार बार कहते हैं, जैसे क्या कहा, सुन अल्लाह लजी अतकन कुल शई, सूरत नमल आयत 88 में आप पढ़ चुकी हैं, अल्लाह ताला की कारीगरी है जिसने हर चीज को इंतहाई कमाल से पैदा किया। फिर आप सूरत हिजर आयत 19 में पढ़ चुकी हैं, व अंबतना फीह मिन कुल्ले शैई मौजू, हमने इसमें हर चीज मुनासिब और मौजू उगाई है। और रॉबसन जो है वो कहता है कि ए आसमानों मुझको खबर दो, ए दरियाओ मुझको बताओ, ए जमीन मुझको जवाब दो, ए बेशुमार सितारों तुम बोलो कौन सा हाथ है जिसने तुमको उफक में थाम रखा है, और ए शबे चहार दे किसने तेरी तारीकी को खूबसूरत बना दिया है, तू किस कदर पुरशुको और तू कितनी अजीम है, तू खुद बता रही है कि तेरा कोई सानी है जिसने तुझको बगैर किसी जहमत के बनाया है। और भी जो है वो उसकी शायरी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे ये बात पता चलती है कि ये कायनात जो है अल्लाह ने बनाई है और कितनी खूबसूरत बनाई है, कितनी अच्छी बनाई है। और इस सिलसिले में मैं आपको ये बात भी बताना चाहती हूँ, अमेरिका का एक शायर है व्हाइट मैन वॉलेट, उसने एक नज़म में कहा था, कायनात में घास की पत्ती को वही अहमियत हासिल है जो किसी सितारे की शुआ को, मेरे हाथ का एक जोड़ इंसान की बनाई हुई हर मशीन से बेहतर है, ये सर झुकाकर चलने वाली गाय हर मुजस्मे से हसीन तर है, एक चूंटी या चूहे की तख्लीक इतना बड़ा एजाज है कि अगर दुनिया के मुल्हिद इस पर गौर करें तो करोड़ों ईमान ले आए। तो आप देख लीजिए कि इन सारी बातों से हमें क्या बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ने जो है वो कायनात को बड़ा खूबसूरत बनाया है, और फिर ये सारी चीजें हमें तौहीद की तरफ दावत देती हैं। अच्छा, इस आयत को पढ़ने के बाद आप एक दुआ है जो हम सबको पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा अंता हसन तखल्की फअहसिन खुल्की, कि अल्लाह ताला तूने मेरी शक्ल बड़ी खूबसूरत बनाई है, मेरे अखलाक को भी खूबसूरत कर दे। तो आईना देखने की ये दुआ है, अल्फाज थोड़े बहुत मुख्तलिफ हमें इसके मिलते हैं, तो हम जो है वो आगे चलते हैं, और चलते चलते जो बात याद रखने वाली है फिर वही बात कि हमें जो है वो कायनात पर गौर व फिक्र करना चाहिए, तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन हमें पुकार उठना चाहिए, क्योंकि कायनात पर हम गौर करेंगे तो हैरान होकर दंग होकर ये कह उठेंगे कि तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन फबिअय्यि शयइन बिनिअमति रब्बिना नुकज्जिब ला बिशयइन मिन निअमति रब्बिना नुकज्जिब। तो असल बात यही है कि कायनात बड़ी खूबसूरत है, अल्लज़ी अहसना कुल्ल शयइन खलकहु, जो चीज भी इसने बनाई खूब ही बनाई। और फिर इसमें जो है वो एक और बहुत खूबसूरत बात जिसका मेरे दिल पर भी बहुत असर हुआ, मैंने सोचा कि आपके सामने मैं इस बात को भी रखती हूँ कि अगर हम यूं गौर करें कायनात पर और अपने वजूद पर तो कितना ज्यादा मेरा और आपका ईमान जो है वो बढ़ेगा, और मैं और आप अल्लाह के और कितने ज्यादा करीब जो है वो आ जाएंगे, है ना, क्योंकि गौर व फिक्र करने से इंसान जो है वो अल्लाह के करीब आता है। तो आप अपने देखें हाथों की उंगलियों को देखें और पांव की उंगलियों को देखें, आप देखें कि अगर इंसान की दोनों टांगे बराबर ना होती तो फिर हम क्या करते, कितनी मुश्किल होती ना। तो ये क्या है, ये अल्लाह की जो तखलीक है और इतनी खूबसूरत तखलीक है, ये उसका एक करिश्मा है। अगर दोनों टांगों में बाल बराबर भी फर्क होता तो फिर हमारे लिए जिंदगी दूभर हो जाती, लेकिन हाथ और पांव की उंगलियां बराबर नहीं है, इसलिए कि यहां मकसूद कुछ और है। अगर टांगे बराबर ना होती तो इंसान बेढब हो जाता और चलने के लायक ना रहता, और अगर हाथ की उंगलियां बराबर हो जाएं तो इंसान इन हाथों से काम नहीं कर सकता, सारी उंगलियां एक जैसी हैं तो काम नहीं कर सकता, अंगूठा एक खास काम अंजाम दे रहा है, छोटी उंगलियां कुछ और काम और बड़ी उंगलियां कुछ और काम, और मिलके एक पंजा एक बन जाता है और फिर हम एक काम करते हैं। फतबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तो एक एक चीज पर आप गौर करें। वबदा खल्कल इंसान मिन तीन, फिर उसने इंसान की तखलीक की इब्तदा गारे से की। अब आप देख लें तो इंसान जो सबसे ज्यादा खूबसूरत और कीमती और बेहतरीन चीज है उसको सबसे हकीर चीज से पैदा किया। हवा चलती है, आग जलती है, पौधे बढ़ते हैं, फलते फूलते, उनके अंदर एक हरकत है और वो बुलंदी पर भी हैं, जानवर बात, और लेकिन मट्टी, जमीन, पस्ती, हकीर, अल्लाह ताला ने हकीर मट्टी से इंसान की इब्तदा की। वबदा खल्कल इंसान मिन तीन, उसने इंसान की तखलीक की इब्तदा गारे से की। सुम्मा जाला नस्लहू मिन सुलालति मिम्मा महीन, फिर उसने बनाया, फिर उसने वो जो गारा था उससे चलाई नस्लहू उसकी नस्ल। नस्ल जो है नून सीन लाम, इसके मानी होते हैं अलग होना, जुदा होना। जुदा और अलग होने के मानी में ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और आप देख लीजिए कि एक नस्ल दूसरी नस्ल से जुदा होती चली जाती है ना। एक ही मर्द और औरत होते हैं, फिर उनकी एक जनरेशन, फिर दूसरी जनरेशन, फिर तीसरी जनरेशन, और हर जनरेशन दूसरी जनरेशन से अलग होती चली जाती है। तो उसने इंसान की तकलीफ की इब्तदा गारे से करके फिर उसकी नस्ल जो थी वो बनाई। और नस्ल किससे बनाई, नस्ल को किससे आगे चलाया, मिन सुलाला तिन, सुलाला से। और सुलाला जो है ये मट्टी की एक किस्म होती है, मट्टी का निचोड़ है, मट्टी का जो खुलासा है, नुतफा जो है ना उसके लिए लफ्ज आता है। नुतफे से फिर इसकी नस्ल जो थी वो चलाई, उसकी नस्ल एक सत से चलाई। तो जब उस सत से उसकी नस्ल चलाई, और वो सत होता कैसे है, मिमाइन पानी का होता है, पानी से वो बना हुआ होता है, वो खुलासा जो मट्टी का है, और वो पानी कैसा होता है, महीन हकीर, क्योंकि आपको पता ही है महीन का रूट क्या है, हाव और नून। हाव और नून अगर हौनन इस्तेमाल हो तो आसान और नरम के लिए आता है, यमशूना अलल अर्दि हौना, कि वो जमीन पर नरम चाल चलते हैं। और अगर हूनन आए, हून, तो इसके मानी होते हैं जलील और ख्वार के। उसने जो है इंसान की नस्ल एक ऐसे सत से चलाई जो हकीर पानी की तरह होता है, हकीर पानी की तरह जो है वो होता है। तो यहां पर जो बात सोचने वाली है और बहुत अहम है वो क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ये बात बताना चाहते हैं कि इंसान तेरी हैसियत कुछ भी नहीं है, तू हकीर पानी के नुतफे से जो है वो दुनिया में वजूद में आया है, और निहायत कलील मिकदार में ये कतरा होता है, नुतफा मिम मनीयिन, मर्द की तरफ से आता है, रहम मादिर में बच्चे की जिंस के तायुन का जिम्मेदार बन जाता है। और कुरान में कम से कम 11 मरतबा इंसान को नुतफे से तखलीक किया गया ये बात बताई गई है। और कितना होता है ये लिक्विड, मामूली मिकदार, इतनी मामूली होती है कि प्याला खाली कर देने के बाद अगर प्याले में थोड़ा सा लिक्विड माया चीज लगी हुई रह जाए तो उतना होता है। और सुलाला क्या है, बेहतरीन हिस्सा, खुलासा, जौहर। कहते हैं कि ये मर्द की तरफ से जो आता है तो मर्द से खारिज होने वाले लाखों करोड़ों जो सेल्स हैं, जो नुतफे के सेल्स हैं, उनमें से सिर्फ एक की जरूरत होती है। और मर्द की तरफ से वो खारिज कितने होते हैं, लाखों करोड़ों, और हमल के लिए सिर्फ एक की जरूरत होती है। और लाखों करोड़ों में से उस एक जो खलिया नुतफा है, कुरान पाक ने उसको सुलाला कहा है। समझ आई बात की, उन लाखों करोड़ों में से एक को कुरान ने सुलाला कहा है। क्यों, इसलिए कि औरत के में भी जो बहुत से जो है वो बेजे जो है वो बराबर होते हैं, पैदा होते हैं बहुत से, तो उनमें से भी एक चाहिए होता है। तो मर्द की तरफ से वो सुलाला, वो लिक्विड, वो नुतफा, जिसमें से एक सेल की जो जरूरत होती है तो वो आता है, और औरत के साथ औरत का जो बेजा है उससे आकर जब वो मिलता है तो उससे जो है वो तखलीकी इब्तदा होती है। निकलते तो बहुत से हैं दोनों तरफ से, लेकिन एक जो है वो यानी एक में से फिर आगे बराबर हो जाता है। तो साइंसदान क्या बताते हैं इस सिलसिले में, डॉक्टरी क्या कहती है कि औसतन 30 लाख जो है ना स्पर्म्स वो होते हैं, और उनमें से सिर्फ एक की जरूरत होती है। या फिर आप यूं समझ लें कि खारिज होने वाले नुतफा एक ही है, एक का 30 लाखवां हिस्सा, रुतबे की मिकदार का 30 लाखवां हिस्सा, वो जो है वो चाहिए होता है हमल के ठहरने के लिए। तो ये है वो कि अल्लाह ताला ने जो है वो इंसान की जो नस्ल चलाई, उसकी नस्ल एक ऐसे सत, ऐसे खुलासे से, ऐसे नुतफे से चलाई जो कि मिम्मा इमहीन, जो हकीर पानी की तरह का जो है वो नुतफा होता है। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है, वअन्नहु खलक अज़्ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा मिन नुतफतिन इज़ा तुमना। फिर जैसे फिर एक जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा सुम्मा सव्वाहु। फिर इसको जो है वो निक सुख से दुरुस्त किया। इसके क्या मानी है कि निक सुख से दुरुस्त किया, कि इंतहाई बारीक खुर्दबीनी वजूद से बढ़ाकर फिर पूरी इंसानी शक्ल तक उसको पहुंचाया, इसका जिस्म सारे अजाओ जवारे के साथ मुकम्मल कर दिया। सवा जो है इसके मानी होते हैं सवारना, नोक पलक दुरुस्त करना। आप यूं भी कह सकती हैं जैसे फिनिशिंग टच, सुम्मा सवाहू का बेहतरीन क्या है तर्जुमा, जैसे सवारना, नोक पलक दुरुस्त करना। आप यूं भी कह सकती हैं कि फिनिशिंग टच दिया, वरना फका फी ही मिर रूह ही, और इसके अंदर अपनी रूह जो थी वो फूंक दी। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया कि उसको पैदा करने के बाद इंसान के अंदर अपनी रूह जो है वो फूंक दी। और रूह से मुराद जिंदगी वो नहीं है जो हमें भागती दौड़ती जो है वो इंसान की जिंदगी जो भागती दौड़ती नजर आती है, तो बल्कि इससे मुराद क्या है, वो फिक्रो शऊर, वो अक्लो तमीज, फैसला और इख्तियार जो इंसान के पास होता है, और उसकी जो कुव्वत है जिसकी वजह से इंसान दूसरी तमाम मखलूकात पर जो है वो फौकियत रखता है या उनसे मुमैयज है। तो इसको अल्लाह ताला कहते हैं कि इस रूह को अल्लाह ताला ने जो है वो अपने से लेकर उसमें डाला। तो इसका मानी क्या है, इसके एक मानी तो ये हैं कि ये उसी की मिल्क है, उस जात पाक की तरफ इसकी निस्बत है। जिस तरह एक चीज अपने मालिक की तरफ मंसूब होकर उसकी चीज कहलाती है ना, तो इंसान के अंदर जो रूह है, जो फिक्रो शऊर है, वो जो खास जौहर है जिसे इंसान अपनी जिंदगी में फैसले करता है, तो अल्लाह ताला ने उसको अपनी तरफ निस्बत दी है। दूसरे इसके मानी ये हैं कि इंसान के अंदर अगर इल्म है, फिक्र है, शऊर है, इरादा, फैसला और दूसरे बहुत से औसाफ हैं, इंसान को देखें तो बहुत से औसाफ इसके अंदर पाए जाते हैं ना, ये सारे औसाफ जो हैं अल्लाह की सिफात का परतों हैं, अल्लाह की सिफात का जैसे कि अक्स हैं। तो मादे की वजह से मट्टी से नहीं है, बल्कि क्या है कि अल्लाह ताला ने अपनी रूह जो है वो इंसान के अंदर डाली। अगर मसलन इंसान जो है उसके पास इल्म है तो उसको अल्लाह के इल्म से इल्म मिला है, अगर इंसान के पास हिकमत और दानाई है तो अल्लाह ने अपने पास से उसको हिकमत और दानाई जो है वो दी है। तो मानी क्या है कि इंसान जो है वो अल्लाह की सिफात ही जो है उसका जो है वो परतो है, वनफख फीही मिन रूहिही, और इसके अंदर अपनी रूह फूंक दी, वजअल लकुम सम्अ वल अबसारा, और तुमको दिए कान और आंखें, वल अफिदा और दिल दिए, कलीलम्मा तशकुरून, तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। तो इससे जो है क्या बात पता चलती है, इससे जो है अब आप देखें कि यहां पर अब अल्लाह ताला एक और बात बता रहे हैं कि और दिए तुमको कान आंखें और दिल। कान वैसे तो देखें कान से मुराद क्या है, सुनना। कान, हाँ, आप सबके पास कान है, आप इनको महसूस करें। बाज लोगों के ऊपर ये कान इस तरह का बना हुआ नहीं होता लेकिन उनके पास समात होती है, बाज लोगों के पास जो है वो कान बना हुआ होता है लेकिन समात उनके पास नहीं होती, वो सुन नहीं सकते। तो मुराद क्या है, समा से मुराद क्या है कि समात, तुम्हें सुनना दिया। इसी तरह वल अबसार, अबसार किसे कहते हैं, आईन आंखें होती है ना, और आंखों के अंदर वो जो बिनाई है जिससे हम देख सकते हैं वो है बसीरत, नूर, आंखों का जो नूर है। और तुम्हें, क्योंकि आंखें तो बहुत लोगों के पास है लेकिन बसारत सबके पास नहीं है। फिर इसी तरह से वल अफिदा और दिल दिए, तो दिल से मुराद क्या है, कल्ब तो सबके पास है, जैसे सदर है, सदर के अंदर कल्ब है, और कल्ब के अंदर क्या है, अफिदा है, फुआद है। और इसके मानी क्या है कि इंसान जो है वो सोचता समझता है। कभी दिल को माइंड भी जहन भी कहा जाता है, कभी दिल से मुराद जो है वो सोचने समझने की सलाहियत जो है वो मुराद ली जाती है। तो ए इंसान, ये सारा कुछ जो तुम्हें दिया ये किसने दिया? तुम्हें जो अमीर बनाया, तुम्हें जो रिच बनाया, तुम्हें जो इन दौलतों से माला माल किया कि तुम हर सुनने वाली बात को सुन सको, हर देखने वाली चीज को देख सको, हर अकल में आने वाली बात को समझ सको, ये किसने किया? अल्लाह ताला ने किया। ये क्यों कहा कि कलीलम्मा तशकुरून, तुम कम ही शुक्र अदा करते हो? इसके जो हैं एक मानी तो ये हैं कि इतने एहसानात इंसान पर और इंसान इतना न शुक्रा कि वो अल्लाह का शुक्र बहुत ही कम अदा करता है। यानी जितने भी इंसान है ना वो अल्लाह का शुक्र बहुत ही कम अदा करते हैं। कलीलम्मा तशकुरून, दूसरे इसके मानी क्या है कि शुक्र करने वाले आदमी बहुत थोड़े हैं, इंसानों में से शुक्र करने वाले जो हैं वो बहुत कम लोग हैं। तो अपनी, मैं और आप अपनी तखलीक को देखें कि बाकी जो कायनात है उसकी निस्बत हमारी तखलीक बड़ी खूबसूरत है। हमारा, हमारे जिस्म का रोंगटा रोंगटा, एक एक बाल, अल्लाह की अनायत और शुक्रगुजारी जो है, अल्लाह की जो रबूबियत है उस पर उसको शुक्र अदा करना चाहिए। जो अल्लाह ने नेमत और सलाहियतें हमें दी हैं हमें उनको अल्लाह की रजा के कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम बहुत कम हैं, बहुत कम हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर वही वाली बात जो पीछे आपने सूरत लुकमान में पढ़ी कि अल्लाह ताला ने हजरत लुकमान को जो है वो हिकमत अता की, वलकद आतैना लुकमान अल हिकमत अनिशकुर लिल्लाह। और हिकमत क्या है? रासुल हिकमति मखाफतुल्लाह। और हिकमत क्या है? शुक्रगुजारी। और शुक्रगुजारी क्या है? नेमतों का इतराफ, नेमतों का इजहार, और जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अल्लाह का हक बंदगी जो है ना उसको अदा किया जाए। फिर वही बात कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि जितनी भी नेमतें हैं उनको महसूस करें, उन पे गौर व फिक्र करें। फिर नंबर दो क्या करें? उनका एतराफ करें, उनको एक्सेप्ट तो करें ना कि ये नेमत है। मसलन आप देखें, आप घर जाती हैं, घर जाती हैं और बर्तन बहुत ज्यादा धुलने वाले पड़े हुए हैं। अब क्या आप कहती हैं? ये क्या मुसीबत है, उफ ये मुसीबत। हर वक्त जो है बच्चे जो है वो नाक में दम कर देते हैं, इधर मैं बर्तन धोती हूं उधर सिंक भर जाता है, मैं तो एक मशीन बन के रह गई हूं। तो बर्तन धुलने वाले तभी होंगे ना जब बच्चे घर होंगे, जो बच्चे आपके पास होंगे। जब बच्चे, अगर बच्चे ना होते, अगर शोहर ना होता तो फिर बर्तन धुलने वाले कहां से आते? तो क्या ये एक नेमत है कि आपके घर में बर्तन धुलने वाले होते हैं? इसका ये नहीं मतलब कि बर्तन गंदे पड़े हैं, बर्तनों को धोना है, लेकिन नशुक्री नहीं करनी। इसी तरह आप सफाई करती हैं, बच्चे फौरन उसको गंदा कर देते हैं, घर को उदम मचा देते हैं, और आप कहती हैं सत्यानाश इनका। और बाज औकात नशुक्री के बहुत गलत गलत जुमले आप बोल देती हैं। तो अब ये है कि बच्चे हैं तो घर के अंदर एक रौनक है ना, और घर के अंदर चीजें इधर से उधर जो है वो जा रही हैं, तो ये नशुक्री है। बच्चों को बच्चे क्यों कहें अगर बच्चे घर के अंदर जो है वो चीजों को बेतरतीब ना कर दें? वैसे तो तरतीब डिसिप्लिन कायनात के अंदर है, हमारे वजूद में, हमारे घर में होना चाहिए। कुछ चीजें बचगाना सी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, उनको अपनी जिंदगी का इशू नहीं बनाना चाहिए, और ऐसे जुमले नहीं अदा करना चाहिए जिससे अल्लाह ताला की जो है वो नशुक्री हो। और नशुक्री के अल्फाज हमें अपनी डिक्शनरी से, अपनी गुफ्तगू से निकाल देने चाहिए, है ना? क्योंकि आपको पता ही है कि निशुक्री के अल्फाज अल्लाह को सख्त नापसंद है ना। मसलन बाज लोग हाय हाय बहुत करते हैं, उफ हाय अल्लाह ये क्या मुसीबत है, बड़ी ही मुसीबत है। तो याद रखें वग़दुद मिन सौतिक इन अनकरल अस्वाति ला सौतुल हमीर। शुक्र जहां पे आया था ना उसके बाद सारी जो तफसीलात है उसके अंदर ये चीज भी आती है, आवाज हमारी गुफ्तगू के अंदर शुक्र जो है वो पाया जाए। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास, ये बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। और आप देखें बाजू का घरों में शौहर और बच्चे जब बड़े हो गए, हॉस्टलों में चले गए, बच्चियों की शादी हो गई, बेटे भी अपने घरों के हो गए, आप सारा दिन अकेले घर में बैठे, ऐसे लगता है आप याद करते हैं उन दिनों को जब घरों में, घर में रौनक होती थी, आप इंतजार करते हैं कब बच्चे दोबारा इकट्ठे हों, कब बैठें, कब हंसी मजाक करें, कब वो आपसे मुतालबा करें, कब आप उनकी ख्वाहिशात को पूरा करें। तो असल बात फिर वही है कि इंसान जो है वो कम शुक्र जो है वो अदा करता है। وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور تم لوگ جو ہو وہ کم ہی شکر جو ہے وہ ادا کرتے ہو۔ تو اس سلسلے میں ہمیں آپ اگر آپ میں سے کوئی اس میں پھر وہی والی بات ہوم ورک یہ کہ کان آنکھیں اور دل جو ہے اس پر اگر آپ کمپیوٹر سے ریسرچ کر سکے گوگل میں جا کر، آپ کے بچوں میں سے کوئی، اور پھر اس کو ہم یہاں پہ پیش کر سکتے ہیں کہ تھوڑا اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں یہ کتنی بہترین ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے تھوڑی سی بات رکھتی ہوں، جیسے کان کے بارے میں ہے، انسانی کان کا ایک حصہ قریب قریب 4000 ایسی باریک ترین لیکن پیچیدہ محرابوں پر مشتمل ہے۔ اب غور کریں، انسانی کان کا ایک حصہ، پورا کان نہیں، ایک حصے کے اندر 4000 باریک ترین پیچیدہ محرابیں ہیں جو قامت اور صورت کے لحاظ سے ایک مکمل سٹیپ بائی سٹیپ یعنی تدریجی سلسلہ بناتی ہیں، اور پھر آپ انہیں اعلیٰ درجے کا ایک میوزک انسٹرومنٹ جو ہے اس کی محراب سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز میں، اس کی جو پیچیدہ محرابیں ہیں کان کی، اس کو اس انداز میں اس کو بنایا ہوا ہے کہ ان کی اہلیت آواز کے ہر اس مد و جزر کو جو بادلوں کی کڑک سے لے کر ہوا سے ہلنے والے درختوں کی سائیں سائیں یا کسی سادینے کے ہر رکن کی علیحدہ علیحدہ سروں سے پیدا ہوتا ہے، پوری صحت کے ساتھ وصول کرتی ہے اور فوراً دماغ تک پہنچاتی ہے۔ کان جو ہیں انسٹرومنٹ کی طرح، آپ سوچیں پتوں کی سرسراہٹ ڈیفرنٹ ہے، بادلوں کی کڑک ڈیفرنٹ ہے، کوئی ساز بج رہا ہے اور ساز کے اندر جو مختلف، اس کے اندر مختلف انسٹرومنٹ استعمال ہو رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو کان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہر سگنل کو وصول کر کے فوراً دماغ تک پہنچاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسانی کان کی تخلیق اور ترتیب سے متعلق جو سیلز ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہر چیز کو لیتے ہیں اور اس کو پھر آگے جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ اب آپ آنکھ کو دیکھ لیں، آنکھ بظاہر ہمیں نظر آتی ہے، چھوٹی سی ہے نا، آنکھوں کے جو لینز ہیں یہ اتنے بہترین ہیں کہ جیسے اب لینز ہمیں ملتے ہیں لیکن آنکھ جیسے لینز آج تک سائنس جو ہے وہ ایجاد نہیں کر سکی، کیونکہ آنکھ کے اندر بینائی ہے اور لینز جتنے بھی ہیں اگر آنکھ کے اندر بینائی ہے تو وہ فائدہ دیتے ہیں ورنہ کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ پھر آپ دیکھیں کہ لاکھوں کروڑوں ہڈیوں اور نسوں کی ایک کامل ترتیب ہے آنکھ کے اندر۔ تو آنکھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرشمہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، پوری ایک دنیا ہے، چھوٹی چھوٹی بے شمار باریک اور بڑی نسوں سے مل کر آنکھ جو ہے وہ بنتی ہے۔ سامنے کچھ ہے، یہ پلکوں کو دیکھ لیں، پلکیں کیا کرتی ہیں، پلکیں نا آنکھوں کا پردہ ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتی ہیں کہ کوئی چیز ان کے اندر گر نہ جائے، فوراً پلکیں بند ہو جاتی، آنکھ بند ہو جاتی ہے، آپ کچھ بھی نہیں کہتی، جیسے ایک سگنل ملتا ہے اور آپ کی آنکھ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس پہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اب میں اور آپ کیا کرتے ہیں، بہت سے چشمے لگاتے ہیں، آنکھیں جو ہیں اس میں لینز ڈالتے ہیں اور پھر آنکھوں کا میک اپ، کتنا میک اپ کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اسی طرح آپ دل کو دیکھ لیجئے، ہے نا، اور دل جو ہے دل کی اپنی ایک دنیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ میرے سامنے اس کی ایک تصویر بھی ہے کہ دل خون کے نظام کا ایک نہایت اہم جز ہے، بلا شبہ 100 ٹریلین خلیوں کو انسانی جسم میں ایک ایک کر کے جوڑتا ہے دل۔ اس کے 4 مختلف خانے ہیں اور جو آکسیجن الگ کیے بغیر اور آکسیجن شامل کیے بغیر خون کو جسم کے مختلف حصوں کو یوں پمپ کر کے بھیجتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے میں گڑبڑ نہیں ہوتے۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ ڈفرینٹ جو اس کے والو ہیں اور یہ دل کی جو بناوٹ ہے نہایت نازک ہے، لیکن دل عمر بھر ایک خاص رفتار سے دھڑکتا رہتا ہے، ہماری کوئی مداخلت نہیں ہوتی، تخلیق کی ایک زندہ مثال ہے۔ جو ہی ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ اس میں جان آتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، दिल धड़कना शुरू होता है। फिर पूरी जिंदगी में ये 70 से लेकर 100 इसकी बीट्स होती हैं, फी मिनट के हिसाब से कम 70 और ज्यादा से ज्यादा 100 जो धड़कन है उसके हिसाब से ये धड़कता है। हर धड़कन के दरमियान निस सेकंड का वक्फा होता है, वो निस सेकंड के लिए रुकता है और दिन में तकरीबन 10,000 मरतबा दिल धड़कता है। जब हम इंसानी जिंदगी के अरसे पे गौर करते हैं तो आप अंदाजा कर सकती हैं, आप गिन सकती हैं कि कितनी दफा दिल जो है वो धड़का है। तो ये क्या है कि अल्लाह ताला ने जो है वो ऑक्सीजन को और खून को जो है खून को साफ करने का, ऑक्सीजन हमें देने का एक महफूज जो है वो हमें अल्लाह ताला ने एक पूरी मशीनरी दे रखी है। फिर आप देखेंगे दिल को जिस्म के एक निहायत महफूज हिस्से पे रखा गया है ना, एक खास डिजाइन के साथ बनाकर रखा गया, पसलियों के पिंजरे में एक खास डिजाइन के साथ। इसका मकसद क्या है कि दिल बैरूनी चोटों से पूरी तरह महफूज रहे। फिर ऑक्सीजन के बगैर और ऑक्सीजन मिले हुए खून को कभी आपस में गड़बड़ नहीं होने देता। ये भी क्या है कि अल्लाह ताला ने एक खास टिश्यू से दिल को चार खानों में तकसीम कर दिया है। ऊपर वाला हिस्सा वो है जिसमें दिल का दायां और बायां खाना होता है, ये खून भर देने वाले खाने होते हैं, ये खून को नीचे जोफे दिल में भेजते हैं और फिर उनकी आपस में एक तकसीमे कार होती है, तरतीब होती है। फिर ये खून के दबाव को इस तरीके से तरतीब देता है कि ये अजा को नुकसान नहीं पहुंचाता। दिल सिर्फ एक पंप के तौर पर काम नहीं करता बल्कि दो मिले हुए पंपों के तौर पर काम करता है। हर एक अपना एक खाना होता है और दिल का दायां हिस्सा खून को निस्बतन कम प्रेशर के साथ फेफड़ों को भेजता है और बायां हिस्सा खून को ज्यादा दबाव के साथ पंप करके पूरे जिस्म को पहुंचाता है। खून के इस दबाव में बाकायदगी बहुत अहम है क्योंकि अगर वो खून जो फेफड़ों को पंप किए गए इनका दबाव भी वही हो जो इस खून का था जिसे पूरे जिस्म में भेजा गया था, तो फेफड़े ये दबाव बर्दाश्त न कर सकेंगे और कुचले जाएंगे। दिल के अंदर एक बेनक्स तवाजुन पाया जाता है और उसे बड़ी उम्दगी से अल्लाह ताला ने डिजाइन किया है। और फिर हमारे जिस्म को बहुत से मवाद की जरूरत होती है और ये दिल फराहम करता है। दिल जो है जो इसकी वेन्स हैं ऑक्सीजन को टिश्यूओं में पहुंचाती हैं जो तमाम खलियों तक जाता है। हार्मोन्स, खुराक, दूसरी गजाएं, इनके दरमियान जो है वो गर्दिश के दौरान खून ऑक्सीजन के अलावा दूसरे मवाद भी टिश्यूओं में जो है वो तकसीम करता है। फिर आप देखें कि खून के बहाव की सिम का तायुन कि किस तरफ को जाए और किस तरतीब से जाए, इसमें भी वॉल्व जो दिल के हैं वो काम करते हैं। रेशेदार टिश्यू होते हैं, बहुत पतले पतले पट्टे थामे हुए होते हैं। अगर इन पट्टों में से कोई एक काम करना छोड़ दे तो फालतू खून जो है दिल के खानों की तरफ बहने लगता है जिससे दिल की बीमारी पैदा हो जाती है। फिर अब और भी अगर आप दिल पर ही डिजाइन जाएं तो और भी बहुत सी बातें ऐसी हमारे सामने आती हैं कि धड़कती देखता हूं जब कोई शय उठा लेता हूं दिल समझ कर, है ना, मैं दिल को रोऊं के जिगर को मीर मेरी दोनों से आशनाई है। तो असल में दिल एक धड़कती हुई चीज है और दिल ही वो है कि दिले जिंदा कहीं तू ना मर जाए कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। तो ये चीजें अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दी हैं और हमने इनका शुक्र अदा करना है और इस बात पे सोचना है कि अल्लाह ने ये क्यों कह दिया कि हम कम शुक्र अदा करते हैं। तो फिर क्या होमवर्क है, सूरत लुकमान में क्या बात आखिर में निचोड़ के तौर पर हम लाए थे कि नेमतों का एतराफ, तो आपने फिर कहा किसी को ने एतराफ किया कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, वालदैन है या फिर शौहर है या फिर उनके रवैये हमारे सामने आते हैं कि ये नहीं किया ये नहीं किया ये नहीं किया, तो फिर नाराज होते हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं कि ये कैसे कहे, ये बड़ा मुश्किल होमवर्क है जी कहते रहते हैं। तो बहरहाल इतराफ बहुत जरूरी है, इकरार बहुत जरूरी है, फिर उसके मुताबिक जो है वो अमल बहुत जरूरी है। तो अल्लाह ताला हमें उन चंद लोगों में शामिल कर ले जो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हैं। वकालू, और ये लोग कहते हैं ऐजा दलल न फिल अर्दी कि जब हम मट्टी में रल मिल जाएंगे, आइन्ना लफी खलकिन जदीद, तो क्या फिर हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। वकालू ये कौन थे, कहते हैं ये आयत उबै बिन खल्फ के बारे में है। और यहाँ पे जो है ना आयजा, ये सवालिया अंदाज है और इनकारी है, इस्तफाम इनकारी है, मजाक के लिए है, इस्तेहजा के लिए है। क्योंकि उबई बिन खल्फ और इनके साथी क्या कहते थे कि जब हम मट्टी में रल मिल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो क्या नए सिरे से पैदा किए जाएंगे? इन्ना लफी खल्किन जदीद, क्योंकि वो आखिरत का इनकार करते थे। बल हुम बिलिक़ाई रब्बिहिम काफिरून, असल बात यह है कि ये अपने रब की मुलाकात के मुनकिर हैं। बात ये नहीं है कि इनको इस बात पर यकीन नहीं आता कि मरने के बाद दोबारा पैदा किया जा सकता है कि नहीं, इस बात को समझना चाहते हैं। असल बात क्या है? बल हुम बिलिक़ाई रब्बिहिम काफिरून, ये अपने रब की मुलाकात के मुनकिर हैं। ये है असल बात कि रब से मुलाकात करना ही नहीं चाहते। और गोया के यहां पर दो बातें हैं, इनका इतराज क्या था? पहला, हम मट्टी में रल मिल चुके होंगे, ठीक है ना। दूसरा इतराज क्या था? क्या फिर हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे? तो मट्टी में रल मिल जाना, मट्टी के अंदर मिक्स हो जाना, ये तो कोई ऐसी अजीब बात नहीं है, लेकिन नए सिरे से पैदा किया जाना, ये इनका इतराज बड़ा अहम था। क्योंकि मट्टी में रलने के बाद अगर अल्लाह चाहता है किसी को तो कुन कहता है, तो फयाकुन हो जाता है। तो ये दो जो इतराजात हैं, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि असल में इनकी बुनियाद क्या है। बल हुम बिलिक़ाई रब्बिहिम काफिरून, के अपने रब की मुलाकात के मुनकिर हैं, ये रब से मुलाकात की तैयारी नहीं करना चाहते। और जब इंसान जो है वो अमल नहीं करना चाहता, तो ना अमल करने के फिर 100 बहाने होते हैं ना। तो यहां पर भी दरअसल जिंदगी बाद मौत और रब से मुलाकात जो है, इसका जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर इसका क्या जवाब देते हैं? कहते हैं, कुल, इनसे कह दीजिए, यतवफ्फाकुम मलकुल मौती, इनसे ये बात कह दीजिए कि मौत का फरिश्ता, मलकुल मौती, मौत का फरिश्ता, वो क्या करता है? यतवफ्फाकुम, वो तुमको मौत देता है, वो तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेता है, तुम्हें वफात देता है। जब वफात होती है तो क्या होता है? जिंदगी जो है, रूह जो है वो अलग हो जाती है और जिस्म इंसान का अलग हो जाता है। और मलक किसे कहते हैं? फरिश्ते को कहते हैं। ये लफ्ज इस्म जिन्स है, ये लफ्ज जो है ये इस्म जिन्स है। और वैसे तो अगर आप गौर करें तो इंसान की जो रूह निकालने के लिए अल्लाह ताला ने, आप देखें तो एक फरिश्ते इजराइल अलैहिस्सलाम को ये काम दिया है ना, लेकिन क्या बात पता चलती है कि अकेले वो ये काम नहीं अंजाम देते, उनके तहत बहुत से फरिश्ते भी होते हैं। क्यों? जैसे कुरान में आता है ना, अल्लादीन ततवफ्फाहुमुल मलाइकातु, कुरान में ये भी आता है, वहां पे मलाइका आया है कि मलाइका उनको जो है वो मौत देते हैं, रूह जब कब्ज होती है। तो कहीं अल्लाह ताला मलकुल मौत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और कहीं जो है वो मलाइका का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो एक फरिश्ता नहीं है इजराइल के अंडर जो है, इजराइल अलैहिस्सलाम के अंडर, और बहुत से फरिश्ते भी जो है वो शामिल हैं, उनके मतहत हैं। और वो करते क्या है कि वो इंसान की रूह जो है उसको कब्ज कर लेते हैं। अल्लज़ी वुकिला बिकुम, वो जो तुम पर मुकर्रर है, अल्लाह ताला ने मौत का फरिश्ता तुम पर मुकर्रर कर दिया है। लम्हा भर ना जल्दी करता है और ना ही ताखीर करता है, बिल्कुल कमी बेशी नहीं करता। अब ये जो ऊपर उनके शुभात थे ना कि आइजा दललना फिल अर्थ आइन्ना लफी खल्किन जदीद, ये दोनों जो बातें थी उनका अल्लाह ताला ने जवाब दिया है कि अल्लाह का वो फरिश्ता ही वफात देता है जो अल्लाह की तरफ से हर शख्स पर मामूर है। इस वजह से कोई शख्स भी मरने के बाद भी अल्लाह और इसके जो फरिश्ते हैं मलाइका, उनकी निगरानी से ओझल नहीं हो सकता, है ना। क्यों? अल्लाह भी मुक्किला बेकुम, मौत का फरिश्ता तुम पर मुकर्रर कर दिया गया है। अल्लाह ताला ने फरिश्ता जो है वो तुम्हारा वकील बना दिया है। अब फरिश्ता करता क्या है? फरिश्ते की निगाहों से इंसान लम्हा भर को ओझल नहीं होता। जैसे कि अभी जो है वो मैंने आपको सूरत लुकमान के आखिर में भी वो वाकया सुनाया था कि वो जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नहीं था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का था, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स बैठा हुआ था जिसको जो थे वो फरिश्ता, जिसने रूह लेनी थी उसकी, जान निकालनी थी, उसको घूर कर देख रहा था। तो घबराया जब उसको पता चला कि ये है जो जान निकालता है, उसको ये नहीं पता था कि मेरी निकालनी है। उसने कहा मुझे हिंदुस्तान पहुंचा दो, और उसी वक्त आपने हवा को हुक्म दिया और उन्होंने उसको हिंदुस्तान पहुंचा दिया। फिर फरिश्ता जो है वो आया और फिर पूछा कि वो शख्स कहाँ गया जो यहाँ बैठा था। कहा कि वो तो आपको देखकर ऐसा डरा कि उसने कहा मुझे यहाँ से गायब कर दो, कि गोया कि आप हजरत सुलेमान के पास मौत का फरिश्ता आता है तो मुझे गायब कर दो, यहाँ से छुपा दो, हिंदुस्तान पहुंचा दो। तो वहां उसको मैंने हवा को हुक्म दिया, वहां चला गया। कहा अभी भी उसी की रूह तो कब्ज करके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी हैरत हुई तुम्हारे पास बैठे हुए देखकर कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि हिंदुस्तान इसकी जान निकालो और ये तुम्हारे पास बैठा हुआ। तो असल बात क्या है कि मौत के जो फरिश्ते हैं अल्लाह ताला ने उनको हम सब पर वकील मुकर्रर किया। वकील को नहीं जैसे मुकदमा दे देते, फिर वो पूरी पूरी निगरानी करता है, उसको लड़ता है, उसको देखता है। तो यहाँ पे वही बात है, वकीला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाउन, फिर तुम अपने रब की तरफ पलटा कर लाए जाओगे। और ये नहीं कहा कि तुम खुद आओगे, बल्कि क्या कहा कि तुम्हें पकड़ कर लाया जाएगा, चाहो या ना चाहो तुम्हें जरूर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने लाकर जो है वो पेश किया जाएगा। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ इंसान का लुटाया जाना ये अल्लाह ताला की पकड़ की निशानदेही करती है। ये बात कि अल्लाह ताला इंसानों को छोड़ेंगी नहीं, बल्कि क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो लोग जो कहते हैं कि जब हम रट्टी मट्टी में रल मिल जाएंगे हमें फिर जिंदा किया जाएगा, उनको पकड़ कर कहा कि अल्लाह के सामने लाकर पेश किया जाएगा। और किसी को पकड़ कर किसी के सामने क्यों पेश किया जाता है, इसलिए कि उसके अमाल अच्छे नहीं होते, वरना तो इंसान खुशी खुशी जाता है। और उस वक्त हाल क्या होगा, वल्लहु तरा इज़िल मुजरिमूना, काश के तुम देखो मुजरिमों को, वल्लहु और काश, तरा तुम देखते, काश के तुम देखो इज़िल मुजरिमूना, उस वक्त मुजरिम, मुजरिम कौन होते हैं, जुर्म करने वाले, गुनागार, मुजरिम वो जिन्होंने तौहीद और आखिरत का इनकार किया, जिन्होंने पैगंबर का और किताब का इनकार किया। काश के तुम उस वक्त मुजरिमों को देखो, नाकिसु, ये नक्सुन इसका मसदर है, और नाकिस की जो है ये आप देखें तो जमा है नाकिसु, और यहां पर ये आया है फेल की सूरत में, इसम फाइल है, और नकसा का मतलब होता है सरों को झुकाना। और अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं कि काश के तुम उस वक्त देखो कि मुजरिम जो है वो अपने सर झुकाए हुए, रऊसहिम अपने सर। और यहां पे अब वैसे रऊस का लफ्ज अलग भी आ गया है ना, तो रास की ये जमा है, रऊस को कहते हैं, किसी भी चीज का जो आला हिस्सा होता है ना उसको रास कहते हैं, जैसे रासुल हिकमती मखाफतुल्ला अभी मैंने आपको जो है वो बताया। तो ना के सू सर तो झुकाना है, लेकिन सर का कैसे झुकाना है, शर्मिंदगी के साथ, रुसवाई का एहसास लिए हुए, कि मुजरिम जो हैं उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जो हैं वो खड़े होंगे, और खड़े होंगे तो कैसे खड़े होंगे, सर उठाया हुआ नहीं होगा, बल्कि क्या कि सरों को झुकाए हुए अल्लाह के सामने जो हैं वो खड़े होंगे, है ना। और आप देखिए कि सरों का झुकाना, इससे शर्मिंदगी, नदामत, रुसवाई, परेशानी, जिल्लत, सारी की सारी चीजें जो हैं वो टपकती हैं कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानियां की और अब जो है वो सरकिश थे, अब इसके बाद जो है अब अल्लाह ताला के सामने जो है वो खड़े हैं। ना किसु रऊसहिम इंदा रब्बिहिम, मुजरिम सर झुकाए हुए अपने रब के हुजूर जो है वो खड़े होंगे अल्लाह के सामने। और आप देखें कि होमवर्क ना किया हो तो टीचर के सामने खड़ा होना मुश्किल लगता है कि क्या बात कहे ना, सौ बातें सोचते हैं, अच्छा ये कह देंगे, ये हो गया था, मेहमान आ गए थे, तबीयत कुछ बोझल बोझल दी, अच्छा नहीं ये तो झूठ हो जाएगा, तबीयत तो ठीक है फिर क्या कहूं। फिर बाज़ूकात बच्चों ने काम ना किया हो और अम्मी अबू को जवाब देना हो, फिर उस वक्त क्या कहते हैं कि अब अम्मी को हम क्या जवाब दें, अब्बू जान को हम क्या बात कहें, अम्मी आपसे बात करना आसान है, आपसे कह जो दिया बस आप अब्बू को बता दीजिएगा, है ना। तो इंसान जो है बात नहीं कर पाता। तो दुनिया में ये जो जुर्म कर रहे हैं, आज अकड़ रहे हैं और गुरूर कर रहे हैं, जैसे आपने सूरत लुकमान में भी पढ़ा कि लाहवल हदीस में वो मुब्तिला होते हैं, आहसनुल हदीस को वो छोड़ देते हैं, तो फिर वो करते क्या है जब लाहवल हदीस में मुब्तिला होते हैं, वाइजा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन, किब्र करते हैं ना। लेकिन अब जो है अकड़, गुरूर, मुख्ताल, फखूर, सारी कैफियत उनसे जो है वो खत्म हो जाएंगी, अल्लाह ताला को जूं ही देखेंगे अपने सरों को ढह देंगे, नीचे कर देंगे, झुका देंगे। बड़ी बेबसी का वो मंजर होगा कि बड़े बड़े सरदार हैं, हैकड़ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बागीचे, बड़ी दौलत, बड़ा तख्त था, बड़ी कुर्सी थी, बड़े उनके साथ जत्थे थे, लेकिन आज हाल क्या है? वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसु रऊसिहिम इंदा रब्बिहिम, काश तुम देखो वक्त जब ये मुजरिम सर झुकाए हुए अपने रब के सामने खड़े होंगे। इस आयत में उस मंजर का नक्शा पेश किया गया है कि जब इंसान रब की तरफ पलटेगा और हिसाब किताब का वक्त होगा, उस वक्त इंसान का हाल क्या होगा। कहेगा रब्बना, ए हमारे रब, अब सरना व समेना फरजेना नामल सालेहन इन्ना मुकिनून। उस वक्त ये कहेंगे ए हमारे रब, अब सरना, हमने खूब देख लिया। अब देख चुके होंगे गैब का पर्दा तो खत्म हो चुका है, हट चुका है ना, कयामत है, हिसाब किताब है। अब उनकी जबानों पर एक ही एतराफ होगा, अब वो बहाने, वो उजर, वो दुनिया की जिंदगी में जो लाहवल हदीस था, जो खेल तमाशा था, अब सब खत्म। अब पता चल गया ये तो एक हकीकत है, जिंदा हकीकत के अल्लाह और हिसाब किताब। रब्बना अब स्वरना, ऐ हमारे रब, हमने खूब देख लिया। वसमेना और सुन लिया, खूब समझ में आ गई बात, ये जो कुछ हो रहा है, हिसाब किताब है, क्या जिंदगी गुजारी। अब मैं, हम क्या जवाब दें? फरजेना, बस तू हमें लुटा दे। कहां लुटा? दुनिया के अंदर। नामल सालेहन, हम इसलिए लुटा ताकि हम सवाले यानी नेक अमल करें। इन्ना मुकिनून, अब हमें यकीन आ गया है, अब इस बात को हम मानते हैं। अब आप देखिए, मुकिनून, मुकिन की जमा है, ये इस्म फाइल है और ईमान का अगला दर्जा है। अब तो वो ये पुकार उठेंगे कि हमारा यकीन जो है वो ईकान के दर्जे को पहुंचा हुआ है। हम इस बात को मानते हैं, हम इस बात का इकरार करते हैं, बस आप हमें जो है वो एक दफा दुनिया से, दुनिया में जाने का जो है वो मौका दे दीजिए, एक दफा बस आप हमें वापस दुनिया में जो है वो भेज दीजिए, फिर देखिए हम कैसे अमल जो है वो करते हैं। कुरान मजीद में लोगों का ये जो अंदाज है और उनकी ये जो बात है, कुरान में अल्लाह ताला ने बार बार जो है वो बयान की है, अल्लाह ताला ने बार बार बयान की है। आप देखिए, आप सूरत मोमिनून में पढ़ चुकी हैं, सूरत मोमिनून आयत 99 में है, हत्ता इज़ा जाअ अहदुहुमुल मौतु क़ाला रब्बिर्जिउन, यहां तक के जब इनमें से किसी को मौत आने लगती है तो कहता है मेरे परवरदिगार मुझे वापस लौटा दे, लअल्ली अमलु, ताकि मैं अमल करूं, सालेहन अच्छे, फीमा तरक्तु, जो के मैंने छोड़ दिए हैं, मुझे वापस लौटा दे ताकि मैं अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जाकर अमल करूं। कल्ला, जवाब क्या मिलेगा? हरगिज नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये एक कलमा है, ये एक बात है जो कहने वाला जो है वो कहता है। तो आप देख लीजिए कि उस वक्त इंसान बार बार कहेगा कि मुझे जो है वो वापस दुनिया में एक दफा भेज दे। रब्बना अब स्वरना व समेना फरजेना नामल सालेहन इन्ना मुकिनून। नुक्ता क्या है? अमल की बात पहले है और ईकान की बाद में है। आमतौर पर ईमान ईकान होता है तो अमल होता है ना। तो अब आप देखें कि अब उनकी आंखें इतनी खुल चुकी हैं, अब वो इतने परेशान हाल हैं कि अब जो है वो पहले कहते हैं कि हम अमल सवाले करेंगे और साथ ही कहेंगे कि हाँ हम ईमान लाते हैं ना। देखें, आप सोचें जबान अब कैसे चल रही है, अब वो बात कर रहे हैं तो कैसे बात कर रहे हैं। अब उनके सामने हकीकत जब खुल कर आ गई है, अब कहते हैं अल्लाह ताला हमें वापस भेज दे कि हम अच्छे अमल करें। तो मुराद क्या है कि आखरत पर अब ईमान लाना चाहते हैं, अब उसने अमल करना चाहते हैं, और ईमान बिल गैब पर तो ईमान लाए ही नहीं, और अल्लाह का दस्तूर तो यह है नहीं कि दोबारा भेजे। तो आप सोचें कि जैसे कोई ये बात कहे, कोई बात यूं कहे कि मैं अब ये काम करती हूं और मैं अब दाखला लेती हूं, है ना। तो क्या बात कही यहां पे कि हम जो है हम ईमान लाते हैं बाद में है, हम अब हमें यकीन आ गया, लेकिन पहले क्या हमले सवाले करेंगे, कैसे उनकी आंखें खुल जाएंगी, किस तरह से उनकी बातें होंगी। वला उशेना लातैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा, जवाब में अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद होगा, अगर हम चाहते, वलौ शेना, अगर हम चाहते, लातैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा, तो पहले ही हर नफ्स को इसकी हदायत दे देते। इसके मानी क्या है कि हकीकत का मुशाहिदा करना, और जैसे कयामत के दिन हकीकत का मुशाहिदा करवाया जाएगा, गैब हट चुका होगा, तो अगर इस तरह से ईमान लाना मकसूद था तो दुनिया में पहले ही अल्लाह ताला मुशाहिदा करवा के तुम्हें ईमान देते और ताकि तुम अमल करते। तो हमारा ये तरीके कार नहीं है, हमारा ये, हमारी ये स्कीम नहीं है। समझ आ गई बात की? वलौ शेना, अगर हम चाहते, लातैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा, तो पहले ही हर नफ्स को इसकी हदायत दे देते, फिर तो ये गैब और ये निगाहों से हकीकतों को पोशीदा रखना इसकी जरूरत ही नहीं थी। वलाकिन हक कौलू, मगर मेरी बात हक हो गई, पूरी हो गई, लामला जहन्नम मिनल जिन्नति। और वो बात क्या थी अल्लाह ताला की जो हक हो गई, पूरी हो गई, कि मैं जरूर भर दूंगा जहन्नम को किसे, जिनों से, वन्नासी और इंसानों से, अजमाइन, सब के सब। अब यहाँ पे इशारा है उस बात की तरफ जो सूरत स्वात के आखिरी रुकू में इसका पूरा किस्सा और नक्शा बयान किया गया है कि इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, नस्ल आदम को बहकाने के लिए कयामत की मोहलत मांगी। अल्लाह ताला ने कहा, फल हक वल हक का अकूल उलाम लान जहन्नम मिन का व मिम्मन तबिया का मिनहुम अजमईन। बस हक ये है कि, और मैं हक ही कहा करता हूं कि मैं जहन्नम को भर दूंगा तुझसे और उन लोगों से जो इंसानों में से तेरी पैरवी करेंगे। तो अब क्या है बात कि आप दुनिया में जा नहीं सकते, और मेरा तरीका नहीं है कि गैब के पर्दे हटने के बाद किसी की तौबा कबूल हो या किसी को अमल करने का मौका दिया जाए। अब टाइम किस चीज का है? अब मेरी बात वो सच्ची होगी जो मैंने कही थी कि अब मैं जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा। फजूकू पस चखो, विमानसीतुम जो तुमने नजरअंदाज किया। नून सीन या जो है इसके मानी होते हैं नजरअंदाज करना और टालना। यहां नजरअंदाज करने के मानी में है कि अब चखो बिमा, उसको बिमा सबब का है। यहां पे बा जो है ना, बा सबबिया है, कि अब चखो बिमा नसीतुम जो तुमने नजरअंदाज किया, लिका यौमिकुम हाजा, इस दिन की मुलाकात को, तुमने इस दिन की मुलाकात को फरामोश कर दिया। दुनिया के ऐश में गुम होकर तुमने इस बात को भुला दिया कि कभी अपने रब के सामने भी जाना है। इन्ना नसीनाकुम, आज हम तुम्हें जो है, आज हमने तुम्हें भुला दिया है, आज हमने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया है। वजूकू, और चखो अजाब अल खुल्दी, हमेशगी का अजाब, बिमा कुन तुम तामलून, हमेशगी का अजाब कौन सा है? जो तुम दुनिया में अमल करते रहे। अब आप देख लीजिए दो दफा यहाँ पे जो है वजूकू आया है, अल्लाह ताला का सख्त डांट का अंदाज है, अल्लाह ताला की नाराजगी का अंदाज है, और इस नाराजगी के अंदाज में अल्लाह ताला क्या बात बताना चाहते हैं कि दुनिया की जिंदगी इम्तहान गाह है और तुम सब लोग कैंडिडेट हो, मैं एग्जामिनर हूं। दुनिया में जो कुछ मिला है ये इम्तहान के पर्चे हैं, औलाद है, पैसे हैं, कुर्सी है, दौलत है, कद है, और स्टेटस है या घर है, जो कुछ भी है, थोड़ा है या ज्यादा, ये इम्तहान के तुम्हारे पेपर हैं। तुम इसी पे रोते रहते हो, नशुकरी करते रहते हो, परेशान रहते हो, और भूल रहे हो, नजरअंदाज कर रहे हो कि ये पेपर हल करने हैं और फिर मैं इनका चेक करूंगा, हिसाब भी लूंगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसने पेपर अच्छी तरह हल ना किए, जिसने रब के पास जाने की तैयारी ना की, जिसने अल्लाह की बंदगी को इख्तियार ना किया, और जिसने नफ्स की किबरियाई को छोड़कर अल्लाह की अताअत को कबूल ना किया, तो ये वो लोग होंगे कि अल्लाह भी उनको कयामत के दिन भुला देगा और हमेश की के अजाब जो है उसमें उनको मुब्तिला कर देगा। और ऐसे नहीं अल्लाह करेगा, बिमा कुंतुम तामलून, दुनिया में जो तुम अमल करते रहे। तो ये पूरा सबक जो है हमें क्या बताता है कि अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया, किताब भेजी, रसूल को भेजा। रसूल को क्यों भेजा, किताब क्यों नाजिल की? ताकि लोगों को तौहीद का बताया जाए कि एक अल्लाह की बंदगी करनी है, ताकि लोगों को बताया जाए कि दुनिया की जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी, मरना है, अल्लाह के पास जाना है और हिसाब किताब होना है। तो फिर सबको करना क्या चाहिए? सबको जो है वो आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, अल्लाह के पास जाने के बारे में जो होमवर्क करना है, इस सिलसिले में लोगों को संजीदा होना चाहिए। और हमारा हाल क्या है कि हम जो हैं वो दुनिया की रंगरंगियां जो हैं, रंगीनियां जो हैं, या दुनिया के जो भी काम है इसमें मैं और आप जो है वो मसरूफ हैं। मुख्तसर सी जिंदगी है मोहब्बत के लिए, वक्त लाते हैं कहाँ से लोग नफरत के लिए, थोड़ी सी जिंदगी है। इसी तरह हवाए दौर में खुशगवार राह में है, खिजां चमन से है जाती बहार राह में है, अदम के कूद की लाजिम है फिक्र हस्ती में, ना कोई शहर ना कोई दियार राह में है। तो असल बात क्या है कि हम सबको जो है वो आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, और हम सबको ये बात सोचनी चाहिए कि अल्लाह के पास जाएंगे तो फिर हमारा जो है वो हाल क्या बनेगा, हिसाब किताब होगा तो हम जो है वो कहाँ पर खड़े होंगे। एक मुश्ते खाक और वो भी हवा की जद में है, जिंदगी की बेबसी का इस्तियारा देखना है ना। तो क्या करें, आइए मैं और आप जो हैं वो आखिरत की तैयारी करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।